ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 26 जनवरी 2020 के लिए है। विषय सत्य स्वर्णपथ भजन संहिता। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। उत्तरदायी अध्ययन भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में त्रुटि करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पाठ उपदेश बाइबल में से व्यवस्था विवरण। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरी मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मीं के नियन बरसेगा और मेरी बातें औस के नियन टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झाड़ियां। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धार्मी और सीधा है। दानियल। नबूकदनज़र राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसको बाबुल के प्रांत के दुरा नाम मैदान में खड़ा किया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कुपत से यहूदियों की चुगली की। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसली, वीणा, सारंगी, सतार, शहनाई आदि सब प्रकार की आवाजों का शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई दंडवत ना करे वो दहकती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मैसक और अब्दनजु नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन्होंने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी करवाई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनज़र ने जोश और जुलझलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेसक और अब्दनजू को लाओ। नबूकदनज़र ने उनसे कहा, गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति की पूजा करो, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी दहकती हुई भट्टी के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मैसक और अब्दनजू ने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस दहकती हुई आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरुण, हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो, हे राजा, तुझको मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी की हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तब वो पुरुष अपने मोजों, अंगरक्षकों, बागों और वस्त्रों साथ बांधकर उस दहकती हुई पट्टी में डाल दिए गए। तब नबूकदनज़र राजा अचंभित हुआ और घबरा कर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सदृश है। फिर नबूकदनज़र उस दहकती हुई भट्टी के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मैसक और अब्दनजू, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासो, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेसक और अब्दनजू आग में से निकल आए। नबूकदनज़र कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबदनजू का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवताओं की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबदनजू के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यूहन्ना। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तुम्हारे विषय में मुझे कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वो ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। और वो ये बातें कह ही रहा था कि बथेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याकूब। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। विचारकों का समय आ गया है सत्य सिद्धांतों और समय समानता प्रणालियों से स्वतंत्र मानवता के द्वार पर दस्तक देता है। अतीत के संतोष और भावतिका की ठंडी परंपरा के बीच टकराव कम हो रहा है। भगवान की अज्ञानता अब विश्वास के रास्ते के पत्थर नहीं है। आज्ञाकारिता की एकमात्र जमानत उसी की एक सही आशंका है, जिसे जानने के लिए जीवन अनंत है, यद्यपि साम्राज्य गिरते हैं प्रभु हमेशा के लिए शासन करेंगे। सत्य स्वतंत्रता के तत्वों को लाता है। इसके बैनर पर आत्मा से प्रेरित आदर्श बाकी है कि गुलामी को समाप्त कर दिया गया है। भगवान की शक्ति कैद से उद्धार लाती है। कोई भी शक्ति दिव्य प्रेम का सामना नहीं कर सकती है। ये कौन सी शक्ति है जो स्वयं ईश्वर का विरोध करती है? ये किसके साथ आती है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए लोहे की छड़ से बांधती है? जो कुछ भी मनुष्य को गुलाम बनाता है वो ईश्वरी सरकार का विरोध करता है। सत्य ही मनुष्य को मुक्त करता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के रूप में है। मानव सिद्धांत में विश्वास के माध्यम से सत्य की तलाश करना अनंत को समझना नहीं है। हमें परिमित, पारस्परिक और नश्वर के माध्यम से अपरिवर्तनीय और अमर की तलाश नहीं करना चाहिए और इसलिए प्रदर्शन की बजाय विश्वास पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान के ज्ञान के लिए घातक है। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है और आध्यात्मिक समझ भी जले हुए प्रसादों से बेहतर है। मास्टर ने कहा, बिना मेरे द्वार कोई पिता होने का दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह सत्य प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है मार्ग मैं हूं। इस मूल्य पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। पवित्र प्रेरणा ने मन की अव्यवस्थाएं पैदा की हैं, जो आग की लिपटों को कम करने में सक्षम है। जैसा कि बाइबल में तीन युवा अबरानी बंदियों को बावलियों की भट्टी में डाला गया था, जब एक विपरीत मानसिक स्थिति सहज दहन उत्पन्न कर सकती है। दिव्य प्रेम जिसने सांप को हानि राहत बना दिया, जिसने पुरुषों को उबलते हुए तेल से, ज्वलंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाया, उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया। अड़िए या आधे अधूरे पड़ पर बैठना या आत्मा और भावतिक सत्य और त्रुटि के साथ समान रूप से काम करने की उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है। केवल सत्य पर कट्टर अपंती निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है। यदि बीमारी सच है या सत्य का विचार है, तो आप बीमारी को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और इसकी कोशिश करना भी बेतुका होगा। तब बीमारी और त्रुटि को वर्गीकृत करें, जैसा कि हमारे मालिक ने किया था जब उसने बीमारों के लिए ये कहा था, जिसे शैतान ने बाधा की है, और मानव शक्ति पर कार्य करने वाली सत्य की जीवन शक्ति में त्रुटि के लिए संप्रभु मार्ग पाते हैं। एक ऐसी शक्ति जो जेल के दरवाजों को इस तरह से खोलती है और बंदी को शारीरिक और नैतिक रूप से मुक्त करती है। मनुष्य के अधिकारों को त्याग कर हम सभी के उत्पीड़न के विनाश को दूर करने में विफल नहीं हो सकते। गुलामी मनुष्य की वेद स्थिति नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र किया। पौलुस ने कहा, मैं आजाद पैदा हुआ था। सभी पुरुषों को स्वतंत्र होना चाहिए। जहां कहीं प्रभु की आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। प्रेम और सत्य मुक्त करते हैं, लेकिन बुराई और त्रुटि पुरुषों को कैद में ले जाती है। क्रिश्चियन साइंस स्वतंत्रता और रोने के मानक को बढ़ाती है। मेरे पीछे आओ, पाप मृत्यु और बीमारी के बंधन से बचो। यीशु ने रास्ता चिन्हित किया। दुनिया के नागरियों, परमेश्वर के बच्चों की शानदार स्वतंत्रता स्वीकार करो और मुक्त रहो। ये आपका दिव्य अधिकार है। भावतिक बोध का भ्रम ईश्वरीय विधान नहीं, ये आपको बड़ा करता है, आपके मुक्त अंगों को उलझाता है, आपकी क्षमताओं को उपंग करता है, आपके शरीर को ऊर्जावान करता है और आपकी होने की तख्ती को खराब कर देता है। विज्ञान से प्रेरित विश्वास इस तथ्य में निहित है कि सत्य वास्तविक है और त्रुटि असत्य है। सत्य के आगे त्रुटि कार्यता है। दिव्य विज्ञान जोर देकर कहता है कि समय ये सब साबित करेगा। सत्य और त्रुटि दोनों नश्वरता की आशंका से पहले कहीं अधिक निकट आ गए हैं, और सत्य अभी भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि स्वयं नष्ट हो गई है। यदि ईश्वर या सत्य के वर्चस्व के लिए विज्ञान के मजबूत दावे पर विचार किया गया है और अच्छाई के वर्चस्व पर संदेह किया गया है, तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दुष्टता पूर्ण बुराई के जोरदार दावों पर चकित होना, उन पर संदेह करना और अब उसे त्यागने के लिए पाप और अप्राकृतिक प्रेम करना स्वाभाविक नहीं लगता, और बुराई की कभी भी कल्पना करना अच्छा नहीं है और वर्तमान अच्छा है। सत्य को त्रुटि के रूप में इतना आश्चर्यजनक और अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए, और त्रुटि को सत्य के रूप में वास्तविक नहीं होना चाहिए। स्वस्थ के रूप में बीमारी इतनी वास्तविक नहीं लगनी चाहिए। विज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, और हमारे जीवन को सभी के सिद्धांत भगवान के साथ सम्मान जैसे शाप्त करने के लिए वास्तविकता से शासित होना चाहिए। मनुष्य की दास्ता वेद नहीं है। जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता की विरासत में प्रवेश करेगा तो उसका ईश्वर प्राधित भावतिक इंद्रियों पर आधिपति हो जाएगा। नश्वर किसी दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करेगा। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य हमेशा विजयी होता है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।